लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि महिलाओं की गरिमा और अपार मूल्य को हर संस्कृति में मान्यता दी जाए तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों में उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हम कलसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत अपने मंगलवारीय कार्यक्रम में संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र लौदातो सी मेरे प्रभु तेरी स्तुति हो की चर्चा सुन रहे हैं। हमने लौदातो सी के तीसरे अध्याय पर्यावरणीय संकट में मानव की जड़ की चर्चा करते हुए अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में कहा कि सृष्ट किए गए विश्व का विकास करना एक तरह से विवेकपूर्ण ढंग से इसकी देखरेख करना है। इसका अर्थ हमारे लिए यह होता है कि ईश्वर स्वयं हमें अपना साधन बनाते हैं जिसके द्वारा वे उन चीजों की उपयोगिता को लाना चाहते हैं। यदि हम मानव और हमारे चारों ओर की दुनिया पर अपने संबंध के बारे में चिंतन करें तो हम कार्य के संबंध में सही समझ की आवश्यकता को पाते हैं। यदि हम मानव और चीजों के बीच संबंध की बात करें तो हमारे लिए सवाल यह उठकर आता है कि मानव और उसके क्रियाकलापों का अर्थ क्या है। इसका संबंध न केवल शारीरिक या कृषि श्रम से है बल्कि सामाजिक रिपोर्ट तैयार करने से लेकर तकनीकी विकास से डिजाइन तक मौजूदा वास्तविकता में संशोधन से जुड़ी किसी भी गतिविधि से है। हर कार्य में हम एक तरह से संबंध की विषय वस्तु को पाते हैं जिसे हम अपने से बढ़कर दूसरों के संग अपने को जुड़ा पाते हैं। सृष्टि के विस्मय से भरे चिंतन के साथ जो हमें असीसी के संत फ्रांसिस में मिलता है, ख्रिस्तीय आध्यात्मिकता परंपरा ने भी काम के अर्थ की एक समृद्ध और संतुलित समझ विकसित की है। उदाहरण के लिए हम इसे धन्य चार्ल्स डी फौकॉल्ट के जीवन में और उसके अनुयायियों के जीवन में पाते हैं। श्रोताओ, हम मठवासी जीवन परंपरा की ओर भी देख सकते हैं। वास्तविक रूप में यह दुनिया से दूर होने का समय था, शहरों की गिरती स्थिति से दूर भागना। मठवासी अपने को मरुभूमि में पाते थे इस बात पर विश्वास करते हुए कि वह ईश्वर से मिलन का एक सर्वश्रेष्ठ स्थल था। बाद में नोरकोया के संत बेनेडिक्ट ने इस बात को प्रस्तावित किया कि मठवासी एक समुदाय में जीवन यापन करें जहां प्रार्थना और आध्यात्मिक पठन को शारीरिक कार्यों के संग संयुक्त किया गया। शारीरिक कार्य को आध्यात्मिक रूप से सार्थक देखना क्रांतिकारी साबित हुआ। कार्य का अनुभव हमें एक तरह से पर्यावरण के प्रति अधिक सुरक्षित होने और सम्मानजनक रूप में पेश आने को मदद करता है। यह दुनिया के साथ हमारे रिश्ते को एक उचित संयम से भर देता है। श्रोताओं, हम इस तथ्य से सुनिश्चित हैं कि मानव अपने में एक स्रोत, सभी आर्थिक तथा सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु और लक्ष्य है। लेकिन एक बार जब हमारी चिंता और सम्मान की क्षमता बिगड़ जाती तो यह हमारे लिए कार्य के अर्थ को गलत समझ प्रदान करती है। हमें इस बात को याद करने की जरूरत है कि नर और नारियां अपने में भविष्य को सुधारने की क्षमता रखते हैं। वे अपनी नैतिकता और विरासत में मिली आध्यात्मिकता को बढ़ाते हुए उसमें विकास ला सकते हैं। कार्य को इस समृद्ध व्यक्तिगत विकास की नींव होनी चाहिए जहां हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल होता पाते हैं। सृजनात्मकता, भविष्य के लिए योजना, अपने गुणों का विकास, मानवीय मूल्यों को जीना, दूसरों के संग संबंध, ईश्वर की महिमा करना। इसका तात्पर्य यह है कि आज के वैश्विक समाज की वास्तविक स्थिति में यह आवश्यक है कि हम सभी के लिए स्थिर रोजगार तथा लक्ष्य को प्राथमिकता देना जारी रखें, चाहे व्यापार के सीमित हितों और संदिग्ध आर्थिक तर्क कैसे भी क्यों ना हो। श्रोताओं, हम कार्य करने हेतु एक बुलाहट से बनाए गए हैं। इसका उद्देश्य यह नहीं कि तकनीकी प्रगति का विकास हो जो हमारे मानवीय जीवन का स्थान लेता हो, क्योंकि यह मानव के लिए हानिकारक होगा। कार्य हमारे लिए अनिवार्य है। यह हमारे जीवन को पृथ्वी पर एक अर्थ प्रदान करता है, एक विकास देता है जहां हम मानव के विकास और व्यक्तिगत पूर्णता को पाते हैं। आर्थिक रूप में गरीबी की मदद करना सदैव हमारे लिए एक स्थायी समाधान होना चाहिए। इसका एक वृहद विकल्प हमारे लिए यह हो कि हम कार्य के माध्यम उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने हेतु मदद करें। फिर भी अर्थव्यवस्था की दिशा ने एक प्रकार की तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दिया है, जिसमें श्रमिकों की छटनी और उनकी जगह मशीनों को लाने से उत्पादन की लागत कम हो जाती है। यह अपने में एक दूसरा रूप है जिसके द्वारा हम स्वयं अपने विरुद्ध कार्य करते हैं। रोजगारों को खोना अर्थव्यवस्था में एक नकारात्मक प्रभाव डालती है। सामाजिक पूंजी के विकासशील कटाव के द्वारा विश्वास के संबंधों में, निर्भरता और सम्मान के नियमों में हम एक गिरावट को पाते हैं जो सभी नागरिक सह अस्तित्व के किसी भी रूप के लिए अपरिहार्य है। दूसरे शब्दों में मानवीय लागतों में आर्थिक लागत शामिल है और आर्थिक असफलताओं में सदैव मानवीय लागत शामिल होती है। लोगों के जीवन में खर्च करने की रोक, जिससे थोड़े समय के लिए अधिक लाभ कमाया जा सके, यह समाज के लिए अपने में एक बुरा व्यापार है। श्रोताओं, रोजगार निरंतर दिया जा सके, इस संबंध में हमारे लिए यह जरूरी है कि हम एक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दें जो विभिन्न उत्पादन को बढ़ावा देता और व्यापार को सृजनात्मकता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, छोटे पैमाने पर खाद्य उत्पादन प्रणालियों की एक विशाल विविधता है जो दुनिया के अधिकांश लोगों के लिए भोजन उत्पन्न कर सकती है। जहां हम भूमि की छोटी मात्रा का उपयोग करके और कम अपशिष्ट पैदा करके खाद्य सामग्री उत्पन्न कर सकते हैं, चाहे वह छोटे कृषक क्षेत्र में हो, बगीचों और बागों में हो, शिकार और जंगली कटाई में हो, या स्थानीय मछली पकड़ना हो। अर्थव्यवस्था के पैमाने विशेष रूप से छोटे किसानों को अपनी जमीन बेचने या उन्हें अपने पारंपरिक फसलों के उत्पादन का परित्याग करने को बाध्य करता है। दूसरी चीजों को अपनाना उनके लिए फलहीन होता है, क्योंकि वे स्थानीय और वैश्विक बाजारों से अपने को संयुक्त नहीं कर पाते हैं या उनके बाद अपने उत्पादन की चीजों को बेचने और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की सुविधा नहीं होती है। नागरिक अधिकारियों का यह कार्य और कर्तव्य है कि वे सभी छोटे उत्पादकों और उनके विभिन्न उत्पादनों का स्पष्ट और दृढ़ रूप से सहयोग करें। आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु, जिससे सभी प्रभावकारी ढंग से लाभ उठा सकें, कभी कभी उन लोगों पर प्रतिबंध लगाना पड़ता है जिनके पास अधिक संसाधन और वित्तीय शक्ति होती है। आर्थिक स्वतंत्रता का दावा करना जबकि वास्तविक स्थितियां कई लोगों को उस वास्तविक पहुंच से रोकती है और जबकि रोजगार की संभावनाएं कम होती जा रही हैं, यह दोहरी बात करना है जो राजनीति को बदनाम करती है। व्यापार अपने में एक नेक बुलाहट है जो धन उत्पादन करने और दुनिया को बेहतर बनाने हेतु निर्देशित होता है। यह जिन क्षेत्रों में कार्यशील होता उनमें समृद्धि हेतु एक फलदायक स्रोत हो सकता है, विशेषकर यदि यह रोजगार उत्पन्न की ओर नजर रखता जो आम भलाई हेतु अपनी सेवा को एक मुख्य भाग के रूप में देखता है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र लौदातो सी पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप फ्रांसिस ने पुरोहितों एवं धर्म सामाजिक के प्रशिक्षण पर ध्यान दिए जाने का आह्वान किया है। उन्होंने 30 अप्रैल को अपने एक संदेश में लिखा, आइए हम एक साथ प्रार्थना करें ताकि महिला और पुरुष धर्म सामाजिक एवं सेमिनरी छात्र मानवीय प्रेरितिक आध्यात्मिक और सामुदायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी बुलाहटी यात्रा में आगे बढ़ सकें, जो उन्हें सुसमाचार के विश्वसनीय गवाह बनने की ओर अग्रसर करेगा। दुनिया 3 मई को जब विश्व सूर्य दिवस की 30वीं वर्षगांठ मना रही है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को रेखांकित करने के लिए एड टू द चर्च इन नीड अर्थात जरूरतमंदों को कलीसिया की सहायता संगठन इस बात पर प्रकाश डाल रहा है कि कैसे सौर पैनल पलियों धर्म सामाजिक समुदायों और संस्थानों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं उन देशों में जहां बिजली की कीमतें खतरनाक रूप से बढ़ी हैं। पिछले कुछ वर्षों में लेबनान और सीरिया को प्रभावित करने वाले भयावह वित्तीय संकट ने कई मायनों में सभी नागरिकों के लिए जीवन कठिन बना दिया है। कई वस्तुएं जो पहले सस्ती मिल जाती थीं, वे अब बेहद महंगी हो गई हैं, जिनमें बिजली भी शामिल है। सीरिया में कीमतों में हाल ही में 500% की वृद्धि हुई है। लेबनान के कई हिस्सों में राज्य प्रदत्त बिजली दिन में केवल 4 घंटे ही उपलब्ध है, जिसका अर्थ है कि लोगों को बहुत महंगे ईंधन से चलने वाले जनरेटर का सहारा लेना पड़ता है। सीरिया में स्थिति और भी खराब है। क्षेत्र के आधार पर प्रतिदिन 0 से 3 घंटे के बीच बिजली मिलती है और जनरेटर जो अक्सर माफिया जैसी कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं एकमात्र विकल्प है। देश के कुछ हिस्सों जैसे राजधानी दमिश्क और होम्स में जनरेटर ज्यादातर अनुपलब्ध हैं, जिसके कारण लोग पूरी तरह से राज्य के बिजली की बहुत सीमित आपूर्ति पर निर्भर हैं। स्वाभाविक रूप से इसका कलीसिया की गतिविधियों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। पल्ले और समुदाय अपने विश्वासों को सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं, भोजन भंडारण सीमित है और बढ़ती कीमतें आध्यात्मिक साधना या धार्मिक समारोहों के लिए दलों की मेजबानी की लागत में परिलक्षित हो रही है। इस घटना का कलीसिया की सामाजिक गतिविधियों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। अनाथालय, नर्सिंग होम, स्कूल और किंडरगार्टन अंधेरे में ही काम करने के लिए मजबूर हैं। यही कारण है कि जरूरतमंदों के लिए कलीसिया की सहायता संगठन कलीसियाई संस्थानों को सौर पैनल स्थापित करने में मदद करने के लिए एक बड़े पैकेज का वित्त पोषण कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में संगठन ने सीरिया और लेबनान दोनों में 1.7 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य की 60 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी और इसके परिणाम स्वरूप लाभार्थियों में रोशनी और आशा दोनों की वापसी हुई है। इन परियोजनाओं से कुल 24 धर्म सामाजिक समुदाय लाभान्वित होंगे, साथ ही दोनों देशों के 16 धर्म प्रांतों की 37 पल्लियां भी लाभान्वित होंगी। सौर ऊर्जा 11 कॉन्वेंट और 7 सेमिनरी एवं 9 शिष्यालय के साथ साथ 22 स्कूलों तक भी पहुंचेंगी। राज्य निर्मित बिजली और कार्बन ईंधन आधारित जनरेटर से सौर ऊर्जा की ओर बढ़ने के द्वारा ये कलीसियाई निर्माण टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल विकल्प का उदाहरण पेश कर रहे हैं, जिसके लिए वैटिकन आम घर की देखभाल हेतु हमेशा चिंता व्यक्त करता है। फादर क्रिस्टन जेरिस ने एड टू द चर्च इन नीड को बतलाया कि लेबनान का संत एकला पारिश अपनी बिजली के लिए हर महीने 60 डॉलर चुकाता था, लेकिन जब से सोलर पैनल स्थापित किया गया है हर महीना उन्हें सिर्फ 3 डॉलर चुकाने पड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रेरितिक मिशन के लिए अधिक पैसा बच रहा है। पौत्र परिवार को समर्पित धम संघ की धम बहन याओत ने बतलाया कि सोलर पैनल से बहुत कुछ बदला है। राज्य प्रतिदिन 1 या 2 घंटे ही बिजली प्रदान करता है और यह बहुत महंगी है। उन्होंने कहा, हमारे पास एक कोल्ड रूम और 3 फ्रिज हुआ करते थे, लेकिन अब हमारे पास केवल 1 ही है। हमें जेनरेटर के लिए सदस्यता का भुगतान करना पड़ता है, जिसकी कीमत 30 डॉलर थी। साथ ही 300 से 400 डॉलर के बीच खर्च होता था, लेकिन अब सोलर पैनल के कारण यह 6 डॉलर तक कम हो गया है और शरद ऋतु के महीनों के लिए यह बिल्कुल ही कम है, इसलिए हमने बहुत कुछ बचाया है। धम बहने बौद्धिक रूप से दिव्यांग लोगों के लिए काम करती हैं और बिजली में बचत के द्वारा वे अब कॉन्वेंट के अतिथिशाला में ठहरने के लिए दलों से कम शुल्क ले सकते हैं। पोप फ्रांसिस ने एक नई किताब की प्रस्तावना लिखी है, जिसका शीर्षक है आत्मा में वार्तालाप, आत्मपरक की कला और सिनोडालिटी का अभ्यास। किताब को जेसुइट फादर अंतोनियो ग्वारेरे अल्वेस और फादर ऑस्कर मार्टिनेस लोपेस ने लिखा है और यह वैटिकन पब्लिशिंग हाउस द्वारा 30 अप्रैल को प्रकाशित हुई। संत पापा ने प्रस्तावना में लिखा, प्यारे भाइयों, प्रकाशित होने से पहले यह किताब मुझे भेंट करने के लिए धन्यवाद। यह सुंदर है कि आत्मा में वार्तालाप पर एक पुस्तक का जन्म इसके लेखकों के बीच आध्यात्मिक वार्तालाप से हुआ है। मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि आप पाठक को इस पद्धति की गहराई और इसमें आने वाली हर चीज को समझने के लिए पर्याप्त ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करते हैं, ताकि यह वास्तव में आत्मा को सुनने के अनुभव में बदल सके। संत पापा ने आगे लिखा, आपने कहा है कि सिनोडल प्रक्रिया एक आध्यात्मिक अनुभव है, जिसमें शब्दों और सुनने का लक्ष्य है यह सुनिश्चित करना कि पौत्र आत्मा ही सच्चे नायक है। पुस्तक के अनावरण से हमें यह महसूस करने का अवसर मिलता है कि एक कलीसिया के रूप में हमने जो एक साथ चलने का मार्ग अपनाया है, यह एक व्यक्तिगत, सामुदायिक और एक कलीसियाई आध्यात्मिक अनुभव का गठन करता है और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर व्यक्तिगत कार्य करने की आवश्यकता होती है। अफ्रीकी नेता धनी देशों से विश्व बैंक की एक महत्वपूर्ण पहल के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं, जो विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन और सामाजिक आर्थिक असमानताओं की गंभीर चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए कम ब्याज पर ऋण प्रदान करता है। उनका आह्वान गंभीर चुनौतियों और इस मामले में विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की आवश्यक भूमिका को रेखांकित करता है। दशकों से विश्व बैंक ने गरीब देशों के लिए जीवन रेखा के रूप में काम किया है और दुनिया भर में विकास परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।